दो दिन से, ढाई दिन से, जो सुना है आपने, जो जाना है आपने, आज वो अपने अंतिम चरण की ओर अग्रेसर हो रहा है। आज का समापन सत्र, जिसका विषय है ग्राम स्वराज से स्वर्णिम भारत का पुनर्निर्माण, मंचस्थ मेहमान हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करूंगी कि आप मंच की ओर प्रयाण करें और आज का हमारा समापन सत्र शुरू होगा। जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है और इस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए सभी मेहमानों से निवेदन है कि आप आए और इस सभागृह में अपना स्थान लीजिएगा। परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी, आप अध्यक्षा है ग्राम विकास प्रभाग की। परम आदरणीय डॉक्टर विमला डंकवाल, आप कुलपति है कृषि विश्वविद्यालय कोटा से, आपसे निवेदन है कि आप मंच की ओर प्रयाण करें। ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सुनंदा दीदी जी, ग्राम विकास कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका। ब्रह्मा कुमार शशिकांत भाई जी, आप भी पधारिए। भ्राता अनिल कुमार सागर, जॉइंट डायरेक्टर कृषि विभाग लखनऊ, आप भी मंच पे आ करके अपना स्थान लीजिए। ये वो दिग्गज है जिनका कार्यकाल बहुत विशाल रहा है, लेकिन आज हम सब समापन सत्र के उपलक्ष में जब उपस्थित हुए हैं, तो एक नवीन दृष्टिकोण को सोच करके यहाँ से जाने का समय आ चुका है। खिड़की की सलाखों से देखोगे तो किसी ने चांद में भी दाग देखा, तो किसी ने कीचड़ में कमल देखा। देखने वाले का दृष्टिकोण क्या है वे इसके ऊपर निर्भर करता है। एक दृष्टि, एक अनुपात आपने प्राप्त कर लिया है, अब उस दृष्टिकोण को लेकर के अपने कार्यक्षेत्र में क्या करना है, ये विशेष विचार आपको मिल चुका है। ऐसे समय पे आज के समापन सत्र में आप सबका स्वागत करते हुए मैं बहुत हर्ष महसूस करती हूँ। एक बार जोर से करतल ध्वनि से मंचस्थ मेहमानों और आप सबका स्वागत है। इस विश्वविद्यालय की परंपरा से अब आप बहुत अच्छी तरह से अवगत हो चुके हैं कि कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं करता है, हर एक कार्य परमात्मा द्वारा चिंतित है और उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार होता है। तो आइए आज के समापन सत्र से फिर एक बार उस पिता परमात्मा को बहुत दिल से, श्रद्धा से याद करते हैं और उनसे ये आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि मेरे जीवन के जो ढाई दिन आपने यहाँ दिए हैं, उसका कुछ विशेष निचोड़ आपको प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद उस पिता से प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर के बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से प्रभु पिता की याद में बैठेंगे। शांति। आज का ये समापन सत्र ग्रामीण स्वराज से स्वर्णिम भारत का पुनः निर्माण, इस विषय के अंतर्गत हमारे मंचस्थ मेहमान मंच पर उपस्थित है। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगी कि आप आइए और इन मेहमानों का सम्मान और सत्कार कीजिए। हम सभी जानते हैं कि ये हमारी परंपरा रही है कि बड़ों को सम्मानित करने के लिए पुष्प ही एक श्रेष्ठ माध्यम रहा है, लेकिन आज तो स्वयं तुलसी माँ आज इन मेहमानों को सम्मानित कर रहे हैं। श्रद्धे सरला दीदी जी, डॉक्टर विमला डंकवाल जिनका बेज के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, भ्राता अनिल कुमार सागर जॉइंट डायरेक्टर कृषि विभाग लखनऊ, आदरणीय सुनंदा दीदी जी राष्ट्रीय संयोजिका कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, भ्राता करुणा भाई जी, एक बार जोर से करतल ध्वनि से भ्राता जी का सम्मान कीजिए। आपका स्वागत है, आप सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी के हैं। आपका होना हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जहां खंडित भारत पुनः अखंड भारत बनेगा और हम अपनी आजादी को पर्वत तक मनाएंगे। महोत्सव मनाना नहीं है, लेकिन अमृत जैसा बनना है। परमात्मा के ये महावाक्य है कि सोचा और किया, जो सोचा और किया और किया और हुआ, एक कदम परमात्मा की ओर अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो परमात्मा 100 कदम अपनी ओर आगे बढ़ाएगा। ये ईश्वर का वायदा है, किसी व्यक्ति का नहीं है। जो पीछे बैठे हैं कृपया वो आगे आ जाए और इस सभा मंडप के गैप को आप कवर कीजिए। बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी आदरणीय सुनंदा दीदी जी, आप आज के इस समापन सत्र के मुख्य वक्ता है। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप राष्ट्रीय संयोजिका है, कोल्हापुर से आप पधारे हैं और आपके मार्गदर्शन के नीचे बहुत सारे किसानों ने अपना जीवन यौगिक बनाया है और यौगिक कृषि के आप बहुत अच्छे और सूत्रधार भी रहे हुए हैं। ऐसे श्रद्धे सुनंदा दीदी जी,
ओम शांति। आप भी बोलो ओम शांति। सभी को ये मंत्र पक्का हो गया है और इस मंत्र का सुंदर अर्थ है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म शांति है, तो बाकी सारी बातें शांति से ऑटोमेटिक हो जाती है। इस संसार को फिर से स्वर्णिम संसार बनाने के लिए सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर मानवात्मा के अंदर जो दैवी संस्कार है उनको उजागर करने वाला परमपिता परमात्मा, उनकी अत्यंत प्रिय संतान मंचासीन, हमारी परमादरणीय सरला दीदी जी, परमादरणीय करुणा भाई जी, कुलपति जी, साथ ही साथ अन्य मेहमान और किरण बहन, आप सभी दो तीन दिन से बहुत कुछ सुन रहे हैं और आज का विषय है कि ग्राम स्वराज्य से स्वर्णिम भारत का पुनर्निर्माण। कितना बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं दो तीन बातें ही सुनाऊंगी कि स्वर्णिम भारत का पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का अर्थ ही है ऐसा भारत था, स्वर्णिम भारत था, ये तो हम सभी एक्सेप्ट करते ही है, करते हैं ना, तभी तो गाते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। ऐसे भी कहा जाता है कि भारत जैसा देश नहीं जहां पर देवी देवताओं का राज्य था, जहां श्री कृष्ण श्री राम इन्होंने राज्य किया है, जहां अनेक ऋषि मुनि संत होके गए हैं। और इस भारत देश की विशेषता क्या है, कितने प्रकार के लोग, जाति के, धर्म के, विचारों के, सब मिलजुल करके रहते हैं। और एक भाई हमारे पास बहुत देश घूम करके आया है, बीके है, वो कहता है बहन जी भारत जैसा देश नहीं, मैंने देखा कि भारत के अंदर हजार से भी ज्यादा सब्जियां होती है, अनाज कितने प्रकार का होता है। उत्सवों के लिए तो कहा जाता कि दिन 365 है, लेकिन उत्सव 366 है, 66 है। तो ऐसा देश है, ऐसा था, फिर पुनर्निर्माण कर रहे हैं। क्यों, आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री मस्ट रिपीट, ये संसार का नियम है, पुनर्निर्माण चक्कर फिरता रहता है, फिर रिपीट होता रहता है। तो अभी स्वर्णिम भारत का पुनर्निर्माण, भारत ऐसा था फिर से बन रहा है, बनेगा नहीं, एट प्रेजेंट बन रहा है। और कौन बना रहा है वो तो आप जितना नजदीक आएंगे समझेंगे, लेकिन हम सभी ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो सदस्य है, हमको ये खुशी है कि भारत का स्वर्णिम भारत वापस बन रहा है, लेकिन हम लाखों आत्माएं इसके अंदर जुड़ गई है, एक उसका सदस्य बन गई है, और पुनर्निर्माण का काम, गोल्डन एज वापस कैसे आ रहा है, वो हम लाखों इंसानों के जीवन से प्रैक्टिकल देख रहे हैं। इसमें भी आज की जो बात है, तो मैं आप सभी को ये कहूंगी कि तीन बात का आनंद आप जरूर रखना। उसमें एक आनंद कि आई एम वेरी 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 लकी, कभी अपने लक को दोष नहीं देना। दूसरा आनंद, हमने भारत में जन्म लिया, और तीसरा आनंद हम भगवान को मानते हैं। अभी हम आते हैं स्वराज्य गांव में होगा और भारत का पुनर्निर्माण होगा। तो ग्राम स्वराज्य, तो स्वराज्य का अर्थ तो हम सभी जानते हैं और गवर्नमेंट की भाषा में यही कहेंगे कि हर चीज गांव में किसान खुद बनाए, गांव में हर प्रकार की व्यवस्था जो इंसान को चाहिए वो सभी व्यवस्थाएं हो। ये तो एक भाग हो गया जो दिखने वाली चीज है, लेकिन आप सोचो क्या साधन सामग्री आई, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बने, सड़क अच्छे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, इनसे स्वराज्य ग्राम स्वराज्य हम कहेंगे, इतने से ग्राम स्वराज्य होगा? आज कितने तो गांव है कि जिसमें ये सारी बातें हैं, लेकिन स्वराज्य का अर्थ है मानव आत्मा अपने ऊपर राज्य करे, अपना राजा बने। एग्जाम्पल देती हूँ, स्वच्छता अभियान में बहुत गांवों को स्वच्छता का अवार्ड मिला। आज आप जाकर के वो गांव देखो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अवार्ड के लिए स्वच्छता की, स्वच्छता का गुण नहीं आया, लेकिन स्वराज्य का अर्थ है इंद्रियों के ऊपर भी राज्य। एक साधन सामग्री वो चाहिए, लेकिन साधन सामग्री को यूज करने वाली जो इंसान है, किसान है, उसका खुद के ऊपर राज्य। आप गांवों में देखेंगे कि इंसान छोटी छोटी बातों के लिए भी कितना झगड़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इतनी जगह के लिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा जो चार दिन में वो व्यक्ति खलास हो गया, और कहाँ कहाँ तो पीढ़ी बाय पीढ़ी उनकी दुश्मनी चलती रहती है। फिर कहाँ देखो तो अंधश्रद्धा होती है, व्यसन होते हैं, आपस में दो चार गट होते हैं। तो हमने इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर ये सीखा कि साधन सामग्री तो चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ भारत स्वर्णिम बने उसके लिए इंसान को खुद के ऊपर राज्य करना चाहिए। और यहाँ पर ये सिखाया जाता है, आप सभी ने सीखा भी है कि कैसे शरीर इंद्रिया है, प्रजा है और आत्मा राजा है। तो आत्मा राजा अपने कॉन्शियस में आ जाए, और ऐसे अपने कॉन्शियस में आते हुए हमने हजारों किसानों को देखा है कि जो किसान सभी प्रकार की निगेटिव बातें जितनी भी संसार में आई हुई है उन सब से वो फ्री हो गए हैं। जबकि वो फ्री हो गए हैं तो आप सभी अधिकारी वैज्ञानिकों की मदद से और अनेक आत्माएं, अनेक किसान ऐसे फ्री हो सकते हैं। तो स्वराज्य का मतलब है स्वयं के ऊपर राज्य करना, और राज्य माना राजा, राजा माना दो ही पावर होनी चाहिए। एक पावर है कंट्रोलिंग पावर और दूसरी है रूलिंग पावर। जो नहीं करना चाहिए उसे कंट्रोल करना है, और जो करना है उसे करना ही है। तो इस प्रकार हम राजा भी बने, साथ ही साथ बाकी जो भी साधन सामग्री है, स्कूल है, कॉलेज है, सड़क है, वो भी सारी बातें हो जाए। और राजा बनने के बाद आत्मा दूसरी आत्माओं से बहुत प्यार से व्यवहार करती है, भले सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन वो उसको सहन भी करती है, समा भी लेती है, एकता में भी आती है, शांति से भी रहती है, खुद को भी शांति में रखती, दूसरों को भी रखती है। उसके अंदर वो पावर आ जाती है कि वो खुद को भी चलाती है, लेकिन अनेक आत्माओं को भी चलाती है। तो इस प्रकार अगर ग्राम के लोग खुद के भी राजा बने और साथ साथ अनेक वैल्यूज के आधार से आपस में एकता से चले, प्रेम से चले, शांति से चले, अंधश्रद्धा से मुक्त हो जाए, तो फिर ऐसे अनेक गांव स्वर्णिम भारत निर्माण करेंगे। क्योंकि हम सभी ने समाज शास्त्र में सुना है कि भारत कैसे बना, देश कैसे बनता है, तो पहले एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से गांव बनता है, शहर बनता है, फिर देश बनता है। तो एक व्यक्ति अगर चेंज हो जाता है तो वो स्वर्णिम भारत चेंज करने में मदद करता है। एक हमने कहानी सुनी थी, आपको पता भी होगी, कि एक पिताजी बहुत बिजी थे और बच्चा बार बार उनको कुछ पूछ रहा था, तो पिताजी डिस्टर्ब हो गए, अब इस बच्चे को बिजी कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, बाजू में एक नक्शा था, वो नक्शा उन्होंने फाड़ करके दे दिया और बोला अभी इसको जोड़ो। तो पिताजी को लगा शायद घंटा दो घंटा बीत जाएगा इसमें, लेकिन बच्चे ने क्या किया, ऐसे ऐसे उलट सुलट देखता गया, तो उसने देखा पीछे एक व्यक्ति का पूरी बॉडी है। और व्यक्ति कैसे होता है वो तो मालूम है, तो वो व्यक्ति को जोड़ता गया, और जैसे इधर व्यक्ति को जोड़ा, उधर देश नक्शा जुड़ गया। तो सेम यही बात है कि व्यक्ति जब चेंज हो जाती है तो विश्व ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसलिए आज के इस वक्तव्य में हम यही कहेंगे, किसान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप सभी अधिकारी वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग या जो भी आए हुए भाई बहन हैं, आप सभी राजयोग कीजिए, राजयोगी बने, अपने इंद्रियों के राजा बने और भारत के स्वर्णिम भारत बनाने में बहुत अच्छी तरह से मददगार बने। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। किसी ने कहा, देख भारत की दुर्दशा, आंखें होती बंद, देवों की इस पुण्य भूमि से आती है दुर्गंध। किसी ने कहा और हमने मान लिया, नहीं माना। ये एकमात्र विश्वविद्यालय पूरे विश्व में है जो मानव को देवतुल्य बनाने का कार्य कर रहा है। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। घर को स्वर्ग बनाने का और इसी भारत भूमि को स्वर्णिम भारत बनाने का कार्य ये विश्वविद्यालय कर रहा है। ऐसे भी दुनिया में जो अराजकता फैली हुई है, ऐसे समय में किसी व्यक्ति ने नहीं, परमात्मा की नजर आपके ऊपर पड़ी हुई है। इसलिए इस पल को साधारण ना समझना, ये समय दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ये न्यूमरोलॉजिकल या ज्योतिष की दृष्टि से भी ये जो गोंधुली का समय है, शाम का समय है, ये साधारण समय नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है और मंच पे विराजमान ऐसे राज ऋषि है जिनकी वाणी, एक एक शब्द हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए कटिबद्ध हो सकते हैं। ये महसूस करने की पल है, ये आंतर मन को जागृत करने का पल है और उसे इसी तरह से लीजिएगा। एक ऐसी हस्ती जो आध्यात्म जगत का आत्मा है पर सर को झुका के चलता है, एक ऐसा साधारण व्यक्तित्व जिसने इस विश्वविद्यालय की सेवाओं को आपके घर तक, आपके टीवी तक पहुंचाया है, दिन रात सेवा की, 50 से भी ज्यादा साल जिसकी सुबह परमात्मा की याद से और रात परमात्मा की याद के साथ होती है और पूरा दिन जो सेवा में रत रहते हैं, ऐसे हमारे विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल ब्राता करुणा भाई जी हमारे बीच उपस्थित है, जिन्हें ना स्थल रोक सकता है, ना काल रोक सकता है, ना ये शरीर रोक सकता है, ना तंदुरुस्त होते हुए भी अपनी सेवा को आप कभी भी नहीं चूकते हैं। ब्राता जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हम सबको आशीर्वचन दीजिएगा। परम आदरणीय ब्राता करुणा भाई जी, हाँ जी, दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी जनरल एवं मीडिया प्रभाग के जितने भी आपके घर में आपने ब्रह्मा कुमारीज की चैनल और टीवी में जो जो कार्यक्रम आप देखते हैं, जिसके आप निमित्त हैं, ये एक व्यक्ति की सेवा ने आज पूरे विश्व को कवर किया है। ऐसे आध्यात्म जगत के आत्मा ब्राता करुणा भाई जी,
सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे भारत ग्रामों से बना हुआ है, तो आप सभी जो व्यवसाय करते हैं तो आज भारत के सभी लोग खा रहे हैं, तो आप सभी घूमने के लिए भारत में बहुत स्थान है, परंतु यहां आए हैं तो इसमें कोई तो ईश्वर की प्लानिंग में आप सबको यहां आने का एक सुअवसर मिला है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो यहां आप सभी को भाई बहने मानते हैं, हमारे प्यारे भाई और प्यारे बहने हैं। गांव वालों की जब सुधार होगा तभी ही भारत स्वर्णिम युग बनेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ग्राम उसको कहते हैं तो जो हम सभी भाई बहने वहां रहते हैं, वहां लोग नहीं रहते हैं तो उसको ग्राम नहीं कहते हैं। तो जब तक हम सभी अभी भी ग्राम में है तो उस ग्राम को ही भारत याद करते हैं कि भाई ये खेती करेंगे, व्यवसाय करेंगे तो ही हम लोग जी सकते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमारीज का और इन बातों से क्या ताल्लुक है? तो ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने जो गांव में रहे हैं तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो हम तो परमात्मा के हैं, हम सभी परमात्मा के लिए। अभी आप सबने अनुभव किया कि सुबह उठ के उनको याद करने से जो आनंद आता है तो वो और किसी चीज में नहीं होता है। तभी तो मंदिर में जाते हैं, अभी तक भी विश्वास है भारत में। गांव में जाके हम पूछते हैं आप कैसे हैं, कहते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी, सब ठीक है, सब अच्छा है। शहर वाले नहीं बोलते। तो इसीलिए जो बुनियादी है वो है, जैसे बीज है ऐसे इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का बीज जो है वो गीता में कहा है, मन मना भव मध्याजी भव। जब हम सभी एक ईश्वर को याद करेंगे तो तभी ही हमारी जो भी आप करते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। इसीलिए आप इस समय पर सारे भारत में एक रेवोल्यूशन हो रहा है, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, परंतु अब जो हो रहा है सभी भारत में सबको क्या ला गया है, खाना क्या खाना चाहिए, जो पेस्टिसाइड जो करते हैं उसमें, तो वो नहीं, शुद्ध भोजन हम उसका खाना है जो आप सभी अभी यहां से जाने के बाद जो बनाएंगे, या अभी भी भारत में ऐसा खेती करते हैं तो उसका दाम भी ज्यादा है और लोगों की अभी प्रियता उसके प्रति बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूं आप लोग भी जो यहां आए हैं तो ये दृढ़ संकल्प लेके जाएंगे कि हम भी ऐसा खेती बनाएंगे जो हमारे बाल बच्चे जो है इस पॉइजन से दूर हो जाएंगे। एक समय था तो भारत में 40-45 साल भी जिए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कहते थे। परंतु आज मैं अपना खुद का जीवन से, संस्था से 65 ईयर से मैं संबंधित हूं, तो अभी तक जी रहा हूं, 86 क्रॉस कर चुका हूं। तो इसीलिए आप सब ने तो 3 दिन का कोर्स किया, परमात्मा को याद करने की विधि तो आप समझ गए हैं, और अपना खेती भी कैसे बनाना वो भी आप यहां से प्रैक्टिकली देख के सुन के जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो स्वर्णिम युग केवल खेती से नहीं होता है, जो खेती करने वाले जो है उस युग में रहते हैं। जो भारत स्वर्णिम किसी और के लिए नहीं है, जिन्होंने ये परिवर्तन किया है, फिर से जैसे भारत था सब कुछ अच्छा था, पशु पंछी सब सात्विक थे, ऐसी दुनिया को हम लोग बना रहे हैं अपने कर्म से। तो ये ईश्वर का प्लानिंग है। परमात्मा जब हमको ज्ञान दिए सन 1936 में, पहला ज्ञान हमको यही दिया था कि आप जब बनेंगे तो दुनिया भी बन जाता है। तो इसी कारण एक तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, खेती बनाएंगे अभी सबको, ऐसा शुद्ध पवित्र अन्न खिलाएंगे, परंतु भारत को एक गुरुओं का विश्व गुरु कहा जाता है, भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। ठीक है, कल मैं देख रहा था टीवी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी मंदिर है उस मंदिर में जाते थे और अपनी श्रद्धा दिखाते थे। तो क्या लक्ष्य है उनका? तो ईश्वर ही ये परिवर्तन कर सकता है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी हमको ये सिखाया जाता है, कोई मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान ही ये काम कर सकते हैं। तो आजकल लोग कहते हैं बस अभी भगवान आएगा और अपना कार्य करेगा, परंतु हम कहते हैं भगवान स्वयं आकर के ये कार्य कर रहे हैं। आज 140 देशों तक ये संदेश मिल रहा है, वहां भी यही सिखाते हैं, चाहे किसी भी देश में आप जाइए, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में यही शिक्षा दिया जा रहा है। तो भारत को भी विश्व गुरु बनाना है तो अन्य लोगों से, अन्य संस्कृति से ये सनातन संस्कृति जो है। तो पहली बार मैं बाबा से मिला था 1960 में, तो बाबा से मैंने प्रश्न पूछा, तो बाबा आप क्या कर रहे हैं? जैसे अन्य गुरु अपने अपने पंथ धर्म सिखाते हैं, अनेक पंथ है, अनेक धर्म है हमारा देश में, क्या एक और आप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे, ये भारत में एक धर्म था जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। तो आदि का धर्म है सनातन, परंतु वहां जो रहने वालों को देवी देवता कहा जाता था। तो आप सबको यहां बुलाया है खेती करने के लिए नहीं, वो तो आपको सिखा दिया है, कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग ऐसी दुनिया में कैसे आए जो उसके लिए, जैसे अभी हमारे मंच मंत्री जी ये कहा कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, क्या शहर वाले बनेंगे या हर धर्म वाले बनेंगे? नहीं, जो इस बात को समझकर हम ही ऐसी दुनिया में आएंगे उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल, बहुत सरल। हम थे, अभी बन रहे हैं। जैसे आज हम सुबह उठे तो कल उठेंगे तो क्या उसको शाम कहेंगे? नहीं, उसको सुबह के कहेंगे। वैसे ये सृष्टि इसी तरह से चलता रहा है। तो हम ही ऐसी दुनिया को बनाने में आप सबको यहां निमंत्रण दिया बहनों ने। आप इस धरती पे स्वर्णिम युग ला रहे हैं, परंतु रहने वाले भी देवी देवताएं हैं। देवी देवता उनको कह देते हैं, देवता अर्थात आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए नहीं, अपने लिए तो थोड़ा सा काफी होता है, पर सारे भारत को, इवन विदेशों में भी टाइम पर हम लोगों ने मदद की है भारत। तो इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मुझे अत्यंत हर्ष है हमारे भाई बहनों ने मुझे बुलाया यहां, आप सबका दर्शन हुआ। तो मैं जानता हूं आप यहां से जाने के बाद परमात्मा को याद करते हुए अपने व्यवसाय तो करेंगे ही, पर साथ साथ मैं कौन हूं, मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा के हम सभी संतान है, हम फिर से स्वर्णिम युग में आएंगे। इसीलिए ये शिक्षा आप लोगों को यहां 3 दिन दिया है और मुझे विश्वास है कि आप सभी जाने के बाद, क्योंकि आप अभी जाएंगे तो आपके सब परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, ये अबू गए, माउंट अबू गए, क्योंकि काशी जाते हैं, दूसरे दूसरे स्थान पर जाते हैं, वापस आने के बाद भी क्या है, कोई ऐसा नहीं पूछते हैं कि कोई हो गया होगा। परंतु यहां जो भी आप आए हैं, आप जब वापस जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि भाई आप वहां से क्या सीखा है, क्या ले आए हैं। तो आप में कुछ परिवर्तन, वो कहते हैं ना, तो तीर्थ यात्रा में जाते हैं ना, तो वहां कुछ ना कुछ छोड़ के कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो वैसे आप यहां आए हैं तो आप क्या लेके जा रहे हैं वो मुझे मालूम है, पर क्या छोड़ के जा रहे हैं वो नहीं पता है मुझे। पर विश्वास है, हमारे दादी जी कभी कभी आप लोगों से पूछते थे, प्रकाशमणि दादी जी, तो किसी में भी कोई भी ऐसा गुण हो जो भाई बीड़ी के बिना, सिगरेट के बिना, या हाथ से ऐसा ऐसा करते हैं, आपको पता है, तो कोई भी प्रकार का ऐसा कुछ भी हो तो वो आप यहां छोड़ के जा सकते हो। हम आपसे और कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, इच्छा नहीं रखते हैं, पर कुछ तो आप यहां छोड़ के जाएंगे तो फिर जो अभी तक आप नहीं छोड़ सके हो वो आप यहां संकल्प से, शिव बाबा मैं आज से ये। तो ऐसे भी लोग होते हैं, किसी ने कहा हां जी भाई छोड़ दूंगा, मैं तो 20 बार छोड़ा हूं, 21वां बार एक और छोड़ने पे क्या है। पर वो मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहनों ने देखो कितना प्यार से प्रेम से आपको शिक्षा भी दिया, आपको पता भी नहीं पड़ा कि क्या क्या ये सब हुआ, आप लोगों को ऐसा अनुभव हुआ जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं। और ये सब हम पिता के, हमारे पिता का घर है, ये बाबा का घर है, कहीं बोर्ड बोर्ड देखा कि भाई ये किसका नाम है, किसका मकान है इसका, कहीं भी नहीं, एक बाबा दूसरा न कोई। तो इसीलिए मंत्र भी बहुत सहज है, ओम नमः शिवाय, एक शिव का अलावा और कुछ भी आना नहीं होता है। तो इसीलिए आप अपने घर में आए और आपने ये ज्ञान सुनने का आप लोगों ने समय दिया, और ईश्वर आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि बाबा भगवान परमात्मा सबसे ज्यादा प्यार करता है तो गांव वालों को करते हैं, क्योंकि जो अत्यंत पाप जो हम रोज पेपर में जो देखते हैं ना वो शहरों में है, गांव का बहुत कम है। तो इसलिए अभी भी गांव में हमारे सनातन धर्म का संस्कार है, खून में भरा हुआ है। तो इसीलिए आप सबको देखकर मैं बहुत खुश हूं। तो आप सभी जाकर के प्रयास करेंगे कि परमात्मा को याद करने का। पर एक बात मैं अपना अनुभव से सुना रहा हूं, जो सुबह सुबह उठ के जो ईश्वर को याद करते हैं उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। भले सारा दिन हम करते हैं, परंतु अमृत वेला जिसको कहा जाता है, 4 बजे जो उठ करके जो हम लोग सब करते हैं, जो आप सभी यहां देखा होगा, तो आपसे भी हम यही निवेदन करते हैं। तो आपके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति परमात्मा जो देता है वो एक वो समय है। मैंने एक दिन पूछा, बाबा 5 बजे के बाद क्यों नहीं? उन्होंने कहा, मेरा भगत है, सारे दुनिया में लाखों करोड़ों भगत है जो उठ करके मुझे याद करते हैं, पर 4 से 5 बजे जो है वो हम बच्चों के लिए है। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है, ये एक आप अभ्यास करेंगे, आपके अंदर जो परिवर्तन है वो वर्णन कर नहीं कर सकेंगे। आपको दिल होगी ये बाबा के घर, परमात्मा के घर पे फिर आना, तो ये आप पक्का करके यहां से जाएंगे, कुछ छोड़ने का और कुछ बनने का, जो अपने आप देवता बनने का जो गुण है, जो मैंने बताए होंगे आपके, सुख शांति पवित्रता हर्षित मुख, दुनिया में कुछ भी होवे तो आपका मुख कमल से जो दिखाई देता है खुशी, वो न जाना चाहिए। क्यों? आपको वो मिला है जो दुनिया में कोई न दे सकता है न मिल सकती है, वो परमात्मा। तो आप यहां से जाते हुए ईश्वर मेरा पिता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम ही मेरा पिता है माता है, तो उसको अपने साथ लेके जा रहे हैं, और आपको ईश्वर इतनी शक्ति देंगे जो आप भी इस मानव जन्म में, इस मनुष्य का जन्म में जो हम लोग बन सकते हैं, मनुष्य से देवता, नर से नारायण, जानवर से नहीं। तो इसीलिए आप सभी इसका अभ्यास करेंगे अपने घर में, तो वही संस्कार है जो गांव से, मैं भी गांव से हूं, हमारे माता पिता जो संस्कार हमको दिए, जिसका इससे मैं आप सबके सामने आज हूं। भले मैं इंजीनियरिंग भी पढ़ा हूं, मीडिया भी पढ़ा हूं, सेवा भी बहुत किया हुआ हूं, पर संस्कार जो है वो मेरी लौकिक माँ और पिता ने दिया है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए, इस शहर से या इस जो एजुकेशन से, डिग्री से कभी नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको ईश्वर ने इस कार्य के लिए, जो स्वर्णिम युग है, केवल खेती नहीं, बच्चों में भी, खुद में भी ये संस्कार लाना बहुत जरूरी है, और ये कार्य आप करेंगे, ऐसी भी आशा करते हुए मैं अपनी भाषण कहो, शब्द कहो, समाप्त करता हूँ। इंशा
बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भ्राता जी आपका। ऐसे कहा जाता है, जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वो अपनी नींद से हो, वहम से हो, अहम से हो, या सोए हुए जमीर से हो। मार्गदर्शक अगर सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम करता है। शिक्षा दुनिया आपको देती है, लेकिन दीक्षित आपको खुद होना पड़ता है। आज ये समापन सत्र आपको दीक्षित होने की दिशा की ओर लेके जा रहा है। आगे बढ़ते हुए एक विशेष व्यक्तित्व हमारे बीच, हमारे मध्य उपस्थित है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। कुलपति श्री कृषि विश्वविद्यालय कोटा, बहन डॉक्टर विमला डंकवाल, बीए स्नातक अनुस्नातक स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किए हुए आप, अध्यापक के रूप में आपने विशेष सेवाएं दी है, विभिन्न कमिटी के आप सदस्य रहे हैं, बोर्ड ऑफ स्टडी, पोषण सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन, राजस्थान एक्सटेंशन एजुकेशन सोसाइटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के आप आजीवन सदस्य हैं, कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम में 2001 में आपको प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, न्यूट्रिशन स्कॉलर आप रही है 1819 में आपको उसका भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2023 में वेजिटेरियन केक ट्रीट के लिए आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आपके द्वारा मरुशक्ति नामक कृषि नवाचार चलाया जा रहा है। ICAR प्रायोजित मोटे अनाज वैश्विक परिपेक्ष में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन सफल आयोजन आपने किया है। कार्यकाल के दौरान 60 MSc थीसिस, 10 PhD थीसिस, 2 पेटेंट, 4 पुस्तक, 47 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल में, 52 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलनों और 3 प्रैक्टिकल मैनुअल, 16 प्रशिक्षण मैनुअल। ये सारे अनुभव आपके रहे हैं। मुझे आपके लिए विशेष भावना है, वो इसलिए है कि हमारा फील्ड एक ही है। मैं भी न्यूट्रिशन के साथ कार्य करती हूँ, इसलिए मैं आपको इस मंच पे आमंत्रित करते हुए गौरव अनुभवती हूँ कि एक स्त्री चाहे तो क्या कर सकती है। समाज ने आपको कुलपति स्तर पे बिठाया है। ये विश्वविद्यालय महिलाओं के द्वारा संचालित है और आप भी एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आइए और अपने अतिथि उद्बोधन से उद्बोधित कीजिए। मैडम भ्राता करुणा भाई जी, एक मिनट, हाँ रुकिए रुकिए, कोई नहीं, हमारे बीच से विदाई लेंगे। एक बार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, ये आपकी करुणा है अंदर की कि किसी भी समय किसी भी स्थिति में आप अपना वादा नहीं तोड़ते हैं। एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर के भ्राता जी को विदाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मैडम विमला टंकवाल जी को।
धन्यवाद दीदी किरण जी। 14 मई से 18 मई तक आध्यात्मिकता से सशक्त किसान और समृद्ध गांव के ऊपर जो सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, उसके समापन अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित हैं कौन सी दीदी, सुनंदा दीदी, सुनंदा दीदी हैं हमारे बीच में उपस्थित। हमारे बीच में सरला दीदी, शशिकांत भाई जी, अनिल कुमार सागर भाई जी और अभी अभी हमारे बीच से राजू भाई जी हम सबको आशीर्वाद देकर के यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। समापन का सत्र का जो विषय है, ग्राम स्वराज से स्वर्णिम भारत का पुनः निर्माण, हम उस पर चर्चा के लिए बैठे हैं। मैं सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए मुझे ये अवसर देना उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और बाबा जी का जो कहते हैं ना, सौभाग्यशाली होता है जो इस परिसर में आ पाता है, तो मैं सौभाग्यशाली रही जो मुझे बाबा जी का आशीर्वाद मिला। मैं मेरा जैसे जब मुझसे ज्योति दीदी ने संपर्क किया था, उससे पहले मेरा कहीं और कार्यक्रम बन चुका था, लेकिन आपने सुना होगा या बार बार आप पढ़ते भी हैं कि अगर आप जैसा सोचें और वैसा हो जाए और मिल जाए तो उसमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति का उसमें हमारे ऊपर हाथ होता है। तो जैसे ही वो आई, इट वंस स्पॉन्टेनियस मेरे से निकला कि नहीं, मुझे आना है और मैं यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस परिसर में जब मैंने एंट्री किया, अंदर आई, तो सबसे पहले मैंने तपोवन को देखा, जैसा नाम वैसा चरितार्थ करते हुए वहां का जो वातावरण है, जो हम ये सोच रहे हैं कि ग्राम स्वराज बनाना है, उसी पर आधारित है। उसकी एक एक जो वहां की गतिविधि है, अगर हम उसको गांव तक ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर किसान सशक्त होगा। आध्यात्म से खेती को जोड़ने का जो आपने एक प्रयास किया और उसका भी मैंने, मतलब मैं वो क्या बोलते हैं, साक्षी बनने का मुझे अवसर मिला। और सच में जो एक, जैसे हम इंसान, हम जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जब वो बालक बनना शुरू होता है, फिर जैसे जैसे किशोरावस्था में आता है, हमारे अपने जन्म के कुछ गुण होते हैं जिसमें कहा जाता है कि हमको सत्य बोलना है, किसी को अहिंसा नहीं, मतलब हिंसा नहीं करनी है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। ये हम जब जन्म लेते हैं ना, हम कहते हैं ना, आत्मा जो है पवित्र आत्मा। लेकिन जैसे जैसे हम उस संसार में जा रहे हैं, हमने जो जो हमें दिखाई दे रहा है, हम उसका अनुकरण करना शुरू करते हैं। और जो एक पवित्र आत्मा थी, उसने आध्यात्म से अपने आप को अलग करते हुए एक सांसारिक मनुष्य बना लिया। आध्यात्मिक जो शब्द है, उसे मुझे भी यही लगता था और जो आज का युवा है उसको भी यही लगता है कि जो आध्यात्मिक है, इसका मतलब है कि वो विरह, उसको विमुक्ति, कोई पारिवारिक संबंध नहीं, कहीं जंगल में जाकर के अपना तप करना है। और ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना, बिल्कुल संसाधन विहीन होकर के रहना है। तो ऐसे में जब आध्यात्म का अर्थ जब उन्होंने समझा, तो उनको उससे विरक्ति होनी शुरू हुई कि नहीं, हमें तो आध्यात्म में जाना ही नहीं है। लेकिन जब हम इस ब्रह्मा कुमारी के विश्वविद्यालय में आते हैं, तो यहाँ पर आध्यात्म का एक अलग ही अर्थ, एक बहुत ही सुंदर अर्थ समझ में आता है। वो अर्थ ये कि हम परिवार हैं, परिवार में हमें साथ रह करके एक दूसरे का ध्यान रखना है। और जो हमारा गुण है, जो एक इंसान का गुण है, कि हम अपनी सुख शांति, अपनी और जो भी ज़रूरतें हैं, उसके लिए हम कभी भी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। हम भोजन के लिए तो निर्भर हो सकते हैं जो आध्यात्मिक मनुष्य है, लेकिन सांसारिक मनुष्य क्या होगा, वो भोजन तो खुद खाएगा, खुद मतलब भोजन के लिए वो अपना कर लेगा सारा, लेकिन सुख शांति प्रसन्नता आनंद प्रेम, इन सब का भाव वो दूसरों से प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो ये जब मैंने वहां पर देखा तपोवन में, वहां का जो वातावरण अपने आप में आपको आध्यात्म की तरफ ले जाता है। हम स्वराज की बात करते हैं, वहां की जो मॉडल्स आपने स्थापित किए, अगर उन मॉडल्स को हम गांवों तक लेकर के जाते हैं, तो किसानों के पास हम ये कहें कि आत्मनिर्भरता की स्थिति उत्पन्न होगी। स्वराज के कुछ घटक हैं, जैसे आत्मनिर्भरता, अहिंसा, नैतिक मूल्य, सर्वांगीण विकास, या फिर हम ये कहें कि जो प्राकृतिक जो हमारे पास संसाधन है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करना। जब हम सामूहिक भागीदारी की बात करते हैं, तो एक छोटा सा उदाहरण जो मैंने देखा था वो आपको बताऊंगी कि एक बार मेरा गांव में जाना हुआ, और वहां पर क्योंकि चुनावों का समय था, तो सबसे मुझे चुनाव के लिए कहना था कि भाई आपको जाना है, वोट देने जाना है। तो वहां पर पता लगा कि एक शब्द वहां पे बोलते हैं ल्यास, मतलब कॉमन जो हार्वेस्टिंग करते हैं ये लोग, कि इस आसपास के जितने भी खेत के लोग हैं वो एक खेत पे गए हुए हैं दूसरे खेत पर और वहां पर हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं। सुन के बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा आज भी होता है, वो गांव है वहां पे वो संस्कार आज भी हैं, वहां पर वो सामूहिक भागीदारी वहां पे निभाई जा रही थी। हम स्वराज की बात करते हैं तो स्वराज में आपको ध्यान होगा कि मुझे अपना बचपन ध्यान है, वहां पर अगर हमको कुछ सामान खरीदना होता था तो हम या तो अनाज मुट्ठी भर के ले जाते थे और वो अनाज के बदले हम सब्जी ले लेते थे, या हमारी और कोई आवश्यकता होती थी तो हम वो लेते थे। इसका मतलब कि हम उस गांव में रह करके वो सब चीज उगा रहे हैं जो एक दूसरे के लिए हमें काम में ला आना है। और क्योंकि हम ये बात करते हैं कि स्थानीय वोकल टू लोकल की जब हम बात करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सामान हमारे आसपास जो भी उगाया जा रहा है वो वहाँ के संसाधनों से उगाया जा रहा है जो प्राकृतिक रूप से सही है और हम एक दूसरे के लिए काम आने वाला है, और हमारा जो पैसा या जो हमारा जो सामान है वो हमारे ही किसी भाई के घर पे जाने वाला है। लेकिन जब नैतिक मूल्यों का पतन होता है, हम सब स्वार्थी बनते चले गए और जब पतन हुआ तो हमें लगा नहीं जितना ज़्यादा हम पैसा कमा लें वो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो हमारे पास एक जो ध्येय वाक्य था कि धरती मेरी माता है और पिता और आसमान है, तो हम उसको भूल गए। हमने हमारी जितनी भी पद्धतियाँ थीं सनातन यौगिक खेती से संबंधित उन सबको भुला दिया। भुलाने के कारण हम सबके सामने आज विषम परिस्थितियां आ गई, हम बहुत सारी बीमारियों से जकड़ते चले गए, हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हैं। और जब हमारा मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारा शरीर भी बीमार होता जा रहा है, हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से वैमनस्यता रखी हुई है। तो हमें फिर से उन्हीं घटकों को याद करने की आवश्यकता है, अपना बचपन याद रखने की जरूरत है जिसमें हमने सीखा था उन नैतिक गुणों को, उन नैतिक मूल्यों को, और अपने जो लौकिक माता पिता हैं जो हमारे पास बैठते थे, हमसे बात करते थे, हमको समझाते थे। और देखिए बाबा जी ने भी हम बहनों को ही उस लायक समझा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको दी। और हम मतलब मुझे भी ये आशा है और आप दीदी जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और जो ध्येय लेकर के हम चल रहे हैं कि हमको ये भारत का पुनः निर्माण करना है। और जैसा आपने बताया इट इज़ इन प्रोसेस, हो रहा है। हम जो साइकिल है, हम पहले टॉप पे थे, हम नीचे आ गए, लेकिन हम ये साइकिल वापस मूव ऑन टू टॉप, हम फिर से पहुंचेंगे। हम सब अच्छे सोच विचार वाले बनेंगे, जो एक पॉल्यूशन हमारे विचारों में भी है, एक वातावरण में भी है, उस पूरे पॉल्यूशन को हम हटाएंगे। और जो हम सब का ध्येय है वो ध्येय आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। और बहुत सारे व्यसन, जैसा बाबा जी ने राजू भाई जी ने भी बताया, बाबा जी का भी यही ध्येय था। और एक घटना के बाद अपना वक्तव्य भी मैं समाप्त करूंगी कि एक बार सिर में, क्योंकि जब हम सफर करते हैं तो परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं, शरीर कई बार उनके साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है, तो दर्द होने लगा सिर में, तो लगा कि कोई मेडिकल स्टोर आएगा तो दवाई ले लेंगे उससे। चलते गए, लगा अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। 4 किलोमीटर तक मेडिकल स्टोर नहीं मिला, लेकिन मुझे 6 शोरूम दिख गए। और किसके? अल्कोहल के, बहुत लाइटिंग वाले। हम कितना परिवर्तित हमने अपने आप को कर लिया। पहले एक कोने में हुआ करता था, अंधेरे में वहाँ जाना पड़ता था, और अब वो आपको अपने आप ही बुला लेता है, इतनी लाइटें होती हैं। तो हमें अपने मूल्यों को, अपनी पुरानी बातों को, अपने बचपन को हमें याद करने की ज़रूरत है, आध्यात्म से जोड़ने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर हम हमारा जो सपना है उसको साकार करेंगे और भारत का स्वर्णिम युग हम फिर से लेकर के आएंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आदरणीय कुलपति श्री विमला टंकवाल जी। ये मंच तहे दिल से आपको शुभकामनाएं भी देता है। ऐसे कहा जाता है, फासले सदियों के एक ही लम्हे में तय हो जाते हैं, अगर हाथ मिलाने वाले दिल मिला ले तो। आज दिल से दिल जुड़ चुके हैं और अब अपने कर्म क्षेत्र पर वापस जाने का समय भी आ चुका है। तब इस मंच पर हमारे बीच उपस्थित और एक अतिथि विशेष के रूप में विराजमान भ्राता अनिल कुमार सागर, जॉइंट डायरेक्टर कृषि विभाग लखनऊ, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत शॉर्ट में मैं आपके परिचय देना चाहूंगी। बीएससी एमएससी दीनदयाल यूनिवर्सिटी आगरा से पूर्ण करने के बाद 95 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर आप नियुक्त हुए। 96 की बैच में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से कृषि विभाग में श्रेणी 2 के पद पर आप नियुक्त हुए। बीएसएस के बाद कृषि विभाग में योगदान दिया एवं यहाँ रहते हुए विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए 29 ईयर्स की सेवा आपने पूर्ण की। तत्पश्चात वर्तमान में आप संयुक्त कृषि निदेशक शोध एवं मृदा सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के पद पर आप कार्यरत है। परमात्मा ने आपको पसंद किया है यहाँ उपस्थित रहने के लिए। आप भी अपनी शुभकामनाएं आपका वक्तव्य के द्वारा देंगे। भ्राता जी,
ओम शांति। सबसे पहले तो बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का और हमारे बाबा का, जिनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मंच पर उपस्थित हमारी बहनें, सामने बैठे हमारे साथी बहनें भाइयों, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर किस तरह से आए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे कृषि विभाग से 13 सीनियर अधिकारियों को नॉमिनेट किया यहां के लिए और उन 13 में से हम 5 अधिकारी ही इतने खुशकिस्मत थे जिनको बाबा का आशीर्वाद मिला कि हम लोग यहां तक पहुंच सके। तो जैसे अभी बहन ने बताया कि मेरी जो एजुकेशन हुई वो दयालबाग यूनिवर्सिटी, जो कि राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा चलाया जाता है आगरा में, काफ़ी बड़ा संस्थान भी है और काफ़ी बड़ा ये इंस्टीट्यूशन है राधा स्वामी सत्संग वालों का। तो मुझे मौका मिला वहाँ पर कृषि करने का भी अपनी पढ़ाई के दौरान और सत्संग करने का भी, कृषि कार्य करते हुए भी और सत्संग करने के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी की। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता था कि मुझे ऐसा संस्थान मिला जहाँ पर पढ़ाई करने के साथ साथ सत्संग करने का मौका मिला। लेकिन जब यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि मैं वहाँ तक तो सौभाग्यशाली था, लेकिन आज मैं परम सौभाग्यशाली हो गया कि आज यहाँ पर बाबा ने बुला लिया और ये किसी ना किसी निमित्त के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो हमारे साथ बैठे हुए भाइयों बहनें, जहाँ तक अभी मेरे पूर्व वक्ता बहनों ने बताया कि वाकई जो ये स्लोगन है ग्राम स्वराज से स्वर्णिम भारत का निर्माण नहीं, इसमें लिखा गया पुनर्निर्माण, तो ये सच्चाई है कि हम लोगों को अपने भारतवर्ष का स्वर्णिम पुनर्निर्माण करना है, निर्माण तो पहले हो चुका है। इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, समय कम है, कि आप लोगों ने सुना होगा वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली आया था 1498 में, जिसने भारत की खोज की थी। उसके बाद यूरोपियंस यहां पर आने शुरू हुए, लेकिन उसके पहले 7वीं शताब्दी से भारत पर इतने लोगों का आना जाना हुआ, सिर्फ इसलिए कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था प्राचीन काल से भी। यहां पर शक आए, हूण आए, कुषाण आए, तुर्की आए, मुगल भी आए, और मुगल तो ऐसे आए कि वो यहां पर उनको इतना पसंद आया, यहां पर रच बस गए, उन्होंने इसी को अपनी भूमि मान लिया और यहां पर जितना भी विकास कर सकते थे विकास भी किया उन्होंने। लेकिन जब इसके खोज 1498 में वास्को डी गामा ने कर दी, तो उसने बताया जाकर कि इंडिया तो एक रिचेस्ट कंट्री है। आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को मालूम ही होगा शायद, कि 17वीं शताब्दी तक दुनिया में सबसे धनी देश जो था, सबसे ज्यादा रिच कंट्री इंडिया को माना जाता था। उस समय हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी 17वीं शताब्दी में $1365 की थी, जबकि उसी समय इंग्लैंड की पर कैपिटा इनकम $1137 थी। तो हम लोग दुनिया में काफी रिच थे, और 56% संपत्ति जो थी हमारी पूरी दुनिया की इंडिया में थी। उसने अट्रैक्ट किया लोगों को, आकर्षित किया अपनी तरफ, तो विदेशों से बहुत सारे लोग आए, जिनमें मुख्य रूप से जो अंग्रेज आए थे, जिन्होंने 1605 में शुरुआत की, उसके बाद आते आते 1757 जो फाइनली 1757 में प्लासी का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा, उसके बाद उन्होंने शासन करना शुरू किया, और यहां से जो भी हमारी धन संपत्ति थी उसको सिर्फ यहां से ले जाने में ही उन्होंने पूरा टाइम लगाया। जो आप लोग देखते हैं कि भारत का विकास अंग्रेजों के समय में हुआ, वो इसलिए हुआ कि वो लोग यहां से यहां की संपत्ति को ले जाना चाहते थे। चाहे उन्होंने रेल का निर्माण किया या पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बनाया, जो भी थे, जो भी डेवलपमेंट किया, इसलिए कि यहां से दोहन करते रहे। तो वो दोहन किसका हुआ, वो हमारे जो यानी कि जो हमारा इकाई थी ग्राम स्वराज की बात, जो हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, उस समय आत्मनिर्भर था। मुझे याद है बचपन में हम लोगों को, जब हम लोग को मौका मिलता था गांव में जाने का खेती करने से पहले, जो चीजें मैंने यहां कर सुनी, अब मैं रिवाइव करता हूं उनको, तो याद आता है कि बचपन में तो हम लोग यही देखते थे। जो अभी हम लोगों को यौगिक कृषि के बारे में सिखाया जा रहा है, जुताई करने से पहले भूमि की पूजा की जाती थी, हमारे बैल होते थे, हल की पूजा की जाती थी, बैल की पूजा की जाती थी, जो गेहूं या कोई भी धान जो भी अनाज बोया जाता था उस बीज की भी पूजा की जाती थी। वही तो चीजें हम लोग यहां पर आकर पिछले 3 दिनों से सीख रहे हैं, और मैं समझता हूं इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम लोगों ने जो यहां पर सीखा उसको हम लोग ले जाकर इसको रेप्लीकेट करें, ज्यादा से ज्यादा इसका विस्तार दें। क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारा भारत वर्ष इतना बड़ा देश है कि लगभग 6.5 लाख गांव हमारे भारत में बसते हैं। तो जो ये एक प्रकाश पुंज यहां से प्रस्फुटित हुआ है, इसको फैलाने में काफी समय लगेगा अगर हम लोग इसी स्पीड से काम करते रहे। तो मैं ये चाहता हूं, मेरा अपना ये सोचना है कि यहां से हमें सिर्फ दिशा मिले और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने लोग यहां पर आए हैं वो अपने से साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, और जहां तक मेरी बात है तो हमारा डिपार्टमेंट काफी बड़ा विभाग है, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में, हमारे पास बहुत बड़ा मैन पावर है। हम लोग यहां से जो सीख कर जा रहे हैं, मैं ये संकल्प दोहराता हूं कि हम लोग पूरी तरह से, पूरे तन से, पूरे मन से अपनी सेवाएं देंगे। इसमें जरूरत हमें इस बात की है कि यहां से हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। आपके जो भी सेंटर्स हैं सभी जनपदों में, हमारी पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है अलग से, स्पेशली मैं आभारी हूं हमारे बद्री भाई का, जिनके प्रेरणा से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे विभाग में काफी लंबी सेवाएं दी हैं, और उस सेवा काल में हम लोग जो इनका व्यक्तित्व तो देखते थे, हम लोगों को आश्चर्य होता था कि इनका अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल कैसे है। कभी इनको गुस्से में नहीं देखा, कई मौके आए लेकिन इनको कोई विचलित नहीं कर पाया। तो जब इनके संपर्क में आना हुआ 20 साल पहले, तो मालूम हुआ कि इनको ये प्रेरणा यहाँ से, ये ऊर्जा यहाँ से मिलती है। तो तभी से मन था कि हम लोग किसी न यहाँ पर आएंगे, और अब बाबा के आशीर्वाद से ये कामयाबी मिली है। तो जहाँ तक हम लोगों का होगा, हम लोग पूरी इसमें कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से एक दिन कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि वही गांव में हमें वही सारी चीज़ें करनी है जो पहले होता था। ग्राम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांधी जी ने आज़ादी के बाद सबसे पहले यही अपनी थीम रखी थी कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि गांव हमारा आत्मनिर्भर होगा तभी देश भी आत्मनिर्भर होगा, तभी हम उसको स्वर्णिम काल में ले जाते हुए देख सकेंगे। उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। तो हमें उस समय जो संकल्पना थी महात्मा गांधी जी की, उस संकल्पना को आज के परिप्रेक्ष्य में आगे ले जाना पड़ेगा। उसको हम कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन में डिजिटल माध्यम काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो हमें सबसे पहले गांव में शिक्षा का फैलाव करना पड़ेगा, गांव में लोगों को शिक्षित करें, खासतौर से जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको हम शिक्षित करें। और शिक्षित भी जो आज की मांग है इंटरनेट के जमाने में, अगर हम उनको इंटरनेट, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे तो फिर वो पिछड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांव वालों को सीधे कंप्यूटर से जोड़कर हम लोग आगे ले जाएं, बाहर ले जाएं, बाहर नहीं ले जाना है, उनको गांव में ही स्वरोजगार देना है गांव में। लेकिन जो उत्पादन करेंगे उनके उत्पादों को हम शहर तक कैसे ले जाएंगे, या नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे ले जाएंगे, उसके लिए जरूरत है उनको कंप्यूटर की स्टडी कराने की, उनको इंटरनेट प्रोवाइड कराने की, उनको शिक्षित करने की, और उसके साथ वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे, और तभी वो उस गांव का विकास भी कर सकेंगे। और इस विकास में जरूरत होगी कि गांव के सभी लोग उसमें हिस्सेदारी निभाएं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे बच्चे हों। मैं सुबह के सेशन में भी था, आप में से भी कई लोग रहे होंगे, एक बार प्लीज हाथ खड़ा कर दें कितने लोग सुबह के सेशन में थे। तो आप लोगों ने राठौर साहब का एक प्रेजेंटेशन देखा होगा, जो उनका गांव था, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। तो सही मायने में हमें उसी मॉडल को अपनाना है। उन्होंने जो गांव अडॉप्ट किया था, उस गांव में उन्होंने एक छोटी सी एक सरकार बना ली वहां की, जिसमें महिलाओं से लेकर बच्चों तक की भागीदारी थी। तो सहर्ष वो लोग उस काम में उत्साह के साथ लग गए कि हमें इस गांव को आगे बढ़ाना है। वो किस तरह से इसको जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके साथ जोड़ते हुए उन्होंने वृक्षारोपण भी किया, वृक्षारोपण से अच्छी खासी कमाई गांव की हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम हो या वाटर रिचार्जिंग सिस्टम हो या फिर उसका क्रॉपिंग पैटर्न बदला उन्होंने, और किस तरह से उन्होंने शराब छुड़वाई लोगों की, वहां से शराब की दुकान ही चली गई, और कम्युनिटी सेंटर बनाए, बुजुर्गों के लिए अलग से बनाया और काम करने वाले लोगों के लिए अलग से बनाया। उन्होंने वृक्षारोपण किस हद तक किया कि उन्होंने बताया था अपने मॉडल में करीब 20 लाख रुपए की इनकम तो वृक्षारोपण में अकेले उनके फलों के उत्पादन से लोगों को मिलती है, और तमाम तरह की योजनाएं उन्होंने बताई थी। तो जरूरत इसी बात की है कि हमारे जो ग्रामीण भाई हैं उनके बीच हम लोग जाएं, उनको हम लोग बताएं, क्योंकि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है आज़ादी के बाद, हरित क्रांति आने के बाद से, उस समय समय की मांग थी हरित क्रांति आना, क्योंकि हम लोग के पास पर्याप्त भोजन नहीं था, उतना अनाज नहीं था कि हम लोग अपनी भूख को शांत कर सकते थे अपने देशवासियों की। अमेरिका से हमें आयात करना पड़ता था, वो भी अच्छी क्वालिटी का गेहूं नहीं देते थे। तो उस समय समय की मांग थी, ठीक है, अब हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे हैं, लेकिन अब हमें क्वालिटी पर जाना है। उस क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, और जो पहले हमारी प्राकृतिक खेती की विधियां थी, प्राकृतिक खेती की विधियों को लोगों ने धीरे धीरे छोड़ा। उसके बाद बीच में एक दौर आया कि हम लोगों ने कहा कि आप लोग जैविक खेती कीजिए। जैविक खेती में भी काफी तेजी से काम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गया, इसलिए कि उनको उसका मूल्य नहीं मिला उतना जो उनका उत्पाद था। ये बात निश्चित रूप से सही थी कि रासायनिक कृषि करने के साथ साथ अगर जैविक कृषि जो करता है उसको उत्पादन में कुछ कमी आती है क्योंकि शुरुआत थी, और उसको अगर उत्पादन में कमी आ रही थी तो उतना उसका प्राइस बढ़ के मिलना चाहिए था, तभी उसको उत्साह बना रहता उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके तमाम कारण हो सकते हैं, इसीलिए किसानों ने उसको फिर छोड़ा। उसके बाद फिर उन्होंने अपना रासायनिक खादों का और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके काफ़ी उत्पादन बढ़ाया, जो कि पूरे समाज को दूषित कर रहा है, मानव जाति के अस्तित्व का खतरा बन गया है आज की तारीख में। इतने जो कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण ये जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का है। इसको छुड़ाने के लिए सरकार की तरफ से तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जब तक कि लोग स्वयं से प्रेरित नहीं होंगे और उनको स्वप्रेरणा देने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको लोगों को और जोड़ना पड़ेगा, और उसके माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि किसी तरह से इस जहर मुक्त और विष मुक्त खेती को वो लोग अपनाएं। और उसके लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे कि हम लोग उनको मार्केट के साथ जोड़ें। उसके लिए जरूरी है कि उनको इंटरनेट के माध्यम से मंडियों तक ले जाया जाए, और जो जैविक कृषि करते हैं उनको उनका प्रमाणीकरण करवाया जाए। वो करते हैं, हम लोग उसकी अथॉरिटीज़ हैं, तमाम विभाग हैं, हर स्टेट में अलग तरह का सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों को जब तक हम लोग आगे नहीं ले जाएंगे तब तक उसमें गांव में आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। जब तक छोटे छोटे कुटीर उद्योग गांव में नहीं शुरू किए जाएंगे तब तक गांव से लोग पलायन करते रहेंगे शहरों की तरफ, और शहरों में उनकी मांग बनी रहेगी क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वो धीरे धीरे हमारी ज़मीनों को तो कम कर ही रहा है, उसके साथ साथ हमारे गांव से जो बेरोजगार लोग हैं वो युवाओं का वहाँ शोषण होता है और उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता है, वो अपनी ज़िंदगी उसी में बर्बाद कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग गांव में ही उनको छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग वो तैयार करवाएं और उनको वहाँ पर आत्मनिर्भर बनवाएं। जब वो आत्मनिर्भर होंगे तभी हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा, और स्वर्णिम काल के लिए जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो। तो मैं अपनी बात अब यहीं समाप्त करता हूं इस संकल्प के साथ कि हम लोग इस ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी प्रेरणा से अधिक लोग यहां पर आ सकें और वो भी इसका लाभ उठा सकें। हम लोगों ने तो अपना जीवन सफल बना लिया है, वो लोग भी अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्राता जी। सिर्फ अपने घर पर दिया जला के मत रुक जाना, सिर्फ अपने घर पर दिया जला के मत रुक जाना, कुछ दिए चौराहे पे भी रख आना ताकि भूली भटकी आत्माओं को दिशा मिले। भाइयों बहनों, अब मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करती हूँ जो शून्य है, जिन्होंने अपने आप को शून्य बना के रखा है। आज तक मैंने देखा है कोई उसमें से कुछ कम नहीं कर पाया है, लेकिन जहां जहां जब वो अपने पास आके खड़े हो जाते हैं तो हमारी अपनी वैल्यू 10 गुना 20 गुना 30 गुना बढ़ जाती है। मैं आमंत्रित करती हूँ कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा आदरणीय सरला दीदी जी को। कौन है ये? एक साधारण व्यक्तित्व। आप अपना कर्म क्षेत्र देखिए और मैं दीदी का कर्म क्षेत्र शॉर्ट में कहूं, 20,000 भाई बहने रोज आपके मार्गदर्शन पर ईश्वरीय ज्ञान सुबह अमृत वेले प्राप्त करते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए व्यसन मुक्त जीवन जीते हैं। 900 पाठशालाएं गुजरात के गांव गांव में 900 पाठशालाएं का आप नेतृत्व कर रहे हैं। 36 से ज्यादा सेवा केंद्र मेहसाना सब जोन, वलसाड सब जोन, सूरत सब जोन का आप सफल नेतृत्व करते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं को सुचारू रूप से विश्व भर में चलाने के लिए मुख्यालय से आपको कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा का पद प्राप्त हुआ है। मैं समझती हूँ भारत वर्ष की एक भी ऐसी कृषि यूनिवर्सिटी या कुलपति नहीं होंगे जिन्होंने आपको आमंत्रित नहीं किया हो। ऐसे सरल शून्य व्यक्तित्व वाले सरला दीदी जब जब हम सब के साथ आके खड़े हो जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व 10 गुना बढ़ जाता है। आप अध्यक्षा है और आज अंतिम बार आप उनके आशीर्वचन से लाभान्वित होंगे। श्रद्धेय सरला दीदी जी,
ओम शांति। आप सबको देखते अति हर्ष हो रहा है। आध्यात्मिकता द्वारा सशक्त किसान और समृद्ध गांव, इस रिट्रीट में आप सब ने भाग लिया और 3 दिन से जो एक अलौकिक और इस पवित्र वातावरण के अंदर आप अनुभूतियां कर रहे हैं, हर एक के चेहरे से 3 दिन में वो दिव्यता और अलौकिकता दिखाई दे रही है। आप सब महसूस कर रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं। तो 3 दिन में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा, पैनल डिस्कशन, प्लेनरी सेशन, तनाव मुक्त सेशन, वर्कशॉप, इसी लक्ष्य से कि हम आप सब गांव के हरेक पहलू, किसानों की जो प्राकृतिक खेती की समस्याएं हैं उन पर अपने विचार विमर्श कर इस भारत को पुनः स्वर्णिम बनाने के लिए योगदान दे। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो हमारे आदरणीय करुणा भाई जी बार बार वर्णन कर रहे थे, ये सेशन तो चले लेकिन जिसको आज दिन तक आप सब भगवान कह करके याद करते आए, किसको भावना से, कभी श्रद्धा से, लेकिन आज आपको जिसको गॉड इज वन कहा, उस एक पिता का सत्य परिचय आज सुबह के सेशन में प्राप्त हुआ। आप सब ने उस पिता के परिचय को प्राप्त किया किया सुबह का सेशन में? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया। आपको बहुत प्यास लगी हुई हो और कोई पानी पिला दे तो क्या होगा? संतुष्टि, तृप्ति, वो प्राप्ति आज आपने की। और उसको याद करते हुए अब जब कल आप उसकी विधि सीखेंगे तो आपकी अंतर सुषुप्त जो रश्मियां हैं, शक्तियां हैं, वो भी जागृत होंगी। आज 3रे दिन हम समापन सत्र पर पहुंचे हैं, जिस समापन सत्र का विषय है ग्राम स्वराज्य द्वारा पुनः भारत का निर्माण। इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित हमारे श्रद्धे आदरणीय करुणा भाई जी, जो अपनी ब्लेसिंग दे करके हम सबके बीच से छुट्टी लेकर चले गए हैं, साथ ही साथ हम सबको प्रेरणा देने के लिए, न केवल प्रेरणा देने के लिए लेकिन इस दिशा में हम और आप मिलकर के और कुछ आगे कार्य करें, ऐसे एक श्रेष्ठ संकल्प के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं बहन डॉक्टर विमला डंकवाल जी। आप कुलपति कृषि विश्वविद्यालय कोटा से हैं। हमने उन आप सभी ने डेजिग्नेशन में उनके बायोडेटा में जो सुना, इस आयु तक पहुंचते पहुंचते आपने कई उपलब्धियों को प्राप्त किया है, ये भी आपके एक लगन अथक पुरुषार्थ उसको दर्शाती है। तो ऐसी बहन विमला डंकमाल जी, साथ ही साथ जॉइंट डायरेक्टर कृषि विभाग लखनऊ से पधारे हुए हमारे भ्राता अनिल कुमार सागर जी, आपने भी इस विषय पर अपने बहुत सुंदर विचार हमारे समक्ष रखे। साथ ही साथ मेरे बाजू में बैठी हुई राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनंदा दीदी, आप वो आत्मा हैं जिन्होंने इस योगिक खेती के क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। सबसे पहला कार्य, क्योंकि ये खेती हमारी आरंभ हुई है महाराष्ट्र से और आपके द्वारा। जब किसान खेत के अंदर कीड़ा लगता है तब आप विचार करिए उसको क्या याद आएगा, केमिकल डालो। और तब तक न विद्यालय के इतने भाई बहने इनके साथ संलग्न थे, न ही योगी खेती का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था। ये तो रिसर्च करते 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 इतना बड़ा संगठन तैयार हुआ। आप जैसे कृषि अधिकारी हमारे साथ जुड़े, कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े, कितने एनजीओ के हमारे विनोद भाई जैसे भाई हमारे साथ में जुड़े, तब उसके ऊपर संशोधन करते करते आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि योगी खेती ये है। लेकिन उसको इतना आगे ले जाना और उन किसानों के मनोबल को मजबूत बनाना, ये कार्य आपने किया है। ऐसी हमारी राजयोगिनी सुनंदा बहन और मंच का कुशल संचालन करने वाली ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर किरण रावल और सभा में उपस्थित आप सभी, जो इतना तत्परता से हर सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपके अंदर भी वो जिज्ञासा वृत्ति कि हम अपने भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे, ऐसे आप सभी सभा में उपस्थित हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, कृषि क्षेत्र से संबंधित अनुभवी एनजीओ के अन्य सभी भाई बहने जो हमारे आमंत्रण पर यहां पहुंचे हैं। अब हम चलते हैं विषय की ओर। तो विषय को जैसा बापू गांधी ने कहा, करुणा भाई जी ने भी कहा भारत गांव का देश है, बापू गांधी ने भी कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर हमें भारत को पुनः स्वर्णिम बनाना है तो हम सबका ये कर्तव्य होगा कि हम उस आत्मा अर्थात गांवों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है एक तरफा विकास अभी चल रहा है, सब लगे हुए हैं, सरकार का भी लक्ष्य है, लेकिन कार्य की सिद्धि और सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। उसका मूल कारण है आध्यात्मिकता की कमी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ की छाप अच्छी हो और दूसरे तरफ की छाप ठीक न हो, वो सिक्का समाज में चलेगा नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा कुमारी के इस कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने ये लक्ष्य रखा है कि हम गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए इन दोनों पहलुओं को साथ रखते हुए करेंगे, आधुनिकता भी तो आध्यात्मिकता भी। जब ये दोनों पहलू साथ होंगे तब ही सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि पूर्व वक्ताओं से तीन दिन के अंदर भी, आज भी मंच पर हमने इस बात को सुना और सब उसको महसूस कर रहे हैं कि समाज में किस चीज की कमी है। नेताओं की कमी है नहीं, नीति की कमी है। योजनाओं की कमी है नहीं, आयोजन की कमी है। इस धन धान्य से संपन्न भारत देश के अंदर धन की कमी है नहीं, मूल्यों की कमी है। तो जिस चीज की कमी है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी तब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा। और इन चीजों की कमी को पूर्ण मात्र और मात्र आध्यात्मिकता के द्वारा ही किया जा सकता है। बहन बिमला जी ने बहुत सुंदर कहा कि 4 किलोमीटर के अंदर मेडिकल स्टोर नहीं मिला, लेकिन ये दुकानें जिसको सरकार कह रही है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसकी इतनी पब्लिसिटी हो रही है, हम विकास नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी ने ग्राम विकास के लिए 4 स्तंभ बनाए, स्वास्थ्य, साक्षरता, स्वच्छता और स्वनिर्भरता। इन 4 पिलर्स को लेकर हम लोग 1995 से गांव में ये कार्य कर रहे हैं। और इसमें भी दोनों पहलू को लिया है, साक्षरता के लिए गांव के लोगों को अक्षर ज्ञान के लिए प्रेरित करना, साथ ही साथ ऐसे आत्मा का ज्ञान भी देना। क्योंकि जब तक हम बार बार सुन रहे हैं हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक स्वर्णिम भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। तो आत्मनिर्भरता का एक पहलू तो अभी भी हमारे अनिल भाई ने स्पष्ट किया कि गांव जो है उनके जीवन की जो जरूरियातें हैं वो उस पर स्वनिर्भर हों, लेकिन उसके साथ साथ जब तक आत्मिक ज्ञान नहीं आएगा, व्यक्ति खुद को ही नहीं पहचानेगा मैं कौन हूं, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। किसान किसान नहीं है, ये विद्यालय उनको सिखाता है, प्रभाव सिखाता है, आप केवल किसान नहीं हो, आप इस देश की शान हो, आप इस देश की रीढ़ की हड्डी के समान हो। उनके सम्मान को जागृत करना, राज्यों के माध्यम से उनके मनोबल को दृढ़ बनाना, और जब व्यक्ति का मनोबल दृढ़ होता है तो चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे सामाजिक हो, अथवा खेती में आने वाली समस्याएं हो, उन सब का वो सामना कर सकता है। तो अक्षर ज्ञान के साथ साथ उनको आत्मिक ज्ञान देना, आध्यात्म ज्ञान दे करके सुशिक्षित बनाना। अक्षर ज्ञान शिक्षित बना सकता है, लेकिन सुशिक्षित ये आध्यात्म बनाता है, इसकी ही अभी आवश्यकता है। इसी रीति से स्वास्थ्य के अंतर्गत भी दोनों पहलू, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, उन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप उसका भी आयोजन करते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा उनको अनेक प्रकार की जागृति के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा स्वास्थ्य है मन का स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य में जो विकार व्यसन उनके अंदर है उसके प्रति जागृति लाना, और इस कार्य में हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने गांव-गांव जाकर के व्यसन मुक्ति के अभियान चलाकर लोगों को न केवल जागृत किया, लेकिन आज हजारों किसानों को सशक्त, समृद्ध बनाया, निर्व्यसनी बनाया है आध्यात्मिकता के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार से स्वास्थ्य के साथ स्वनिर्भरता, उसके भी दोनों पहलुओं को लेकर के ये प्रभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अब आप सबको जो हमने यहाँ आमंत्रित किया, हमारा ये लक्ष्य है कि उस कार्य के अंदर जो बहनों को सफलता मिल रही है, अभी भी भाई ने मिसाल दिया जाहोता गांव का जो सुबह आपको हमारे राठौड़ भाई ने बताया, उस गांव के अंदर जो सफलता और सिद्धि मिल रही है राठौड़ भाई का खुद का अपना दृढ़ संकल्प, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, लेकिन जो भी योजनाएं वो क्रियान्वित कर सके हैं और उसमें सफल हुए हैं उसका मूल स्रोत है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वो खुद इस बात को महसूस करते हैं और सबके बीच सभा में इस बात को कहते हैं कि बहनों ने जब ये मूल्यों का शिक्षण उन्हों को दिया, गांव वालों के साथ वो आत्मीयता, वो प्रेम भाव उस ढंग से उनको सिखाया, तब वो इस कार्य में सक्सेस हो चुके हैं, हो सके हैं। तो आवश्यकता किस चीज की है? आध्यात्मिकता की है। क्योंकि आज सुबह में भी मैं किसी ग्रुप को मिल रही थी तो उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में कहा कि हमारे पास गवर्नमेंट का ये है, प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग आयोजन करते हैं, गांव से बुलाते हैं लोगों को, ये ट्रेनिंग देते हैं। तो उनको कहा कि सरकार का आग्रह है इसलिए, बोला हाँ इसीलिए करते। समझा आपने? इस विद्यालय की जो भी बहनें हैं, कोई भी बहन, किसी का किसी गांव या व्यक्ति के साथ कोई स्वार्थ नहीं है, हर व्यक्ति के लिए निस्वार्थ प्रेम है। ये हमारी भारत माता के वो धरती पुत्र हैं जो रात दिन मेहनत करके देश को अनाज दे रहे हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं। इनकी आर्थिक और आध्यात्मिक समृद्धि जब हम बहने करुणा, दया, रहम, प्रेम इन वैल्यूज के माध्यम से करते हैं, चाहे कैसा भी कट्टर व्यक्ति हो, हमने महसूस किया व्यसन भी छोड़े हैं तो विकार भी छोड़े हैं। जब तक सरकारी योजनाएं कितनी भी क्यों ना आ जाएं, माफ करना भाई आप सब बैठे हुए हैं, हाँ मैं ये नहीं कहती हूं कि वो नहीं होने चाहिए, उनकी भी आवश्यकता है क्योंकि वो एक पहलू है, मैं पहले बोल चुकी हूं दोनों पहलू चाहिए, लेकिन उनको हम सफल तब ही कर सकते हैं जब, आप पूरा करेंगे सेंटेंस को, सिखाने वाले में आध्यात्मिकता हो। अभी अभी हमारी बात हो रही थी तो कहा इन्होंने कि ये बातें हमें बचपन से सिखाते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी नहीं छूटता है। तो मैंने कहा आपको मालूम उसका कारण? क्योंकि सिखाने वाले खुद झूठ बोलते हैं। तो कैसे छूटेगा? तो अगर हमें गांव का पुनः स्वर्णिम निर्माण करना है तो आध्यात्मिकता को केंद्र बिंदु बनाते हुए पहले हम स्वयं को सशक्त बनाएं, और उसका श्रेष्ठ माध्यम है राजयोग। इस राजयोग के द्वारा जो आप सीख रहे हैं, मेरा आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि आप खुद को सशक्त बनाएंगे और साथ ही साथ जिस भी पोस्ट पर हैं आप और हम मिलकर के गांव के किसानों का अथवा किसानों के द्वारा जो प्राकृतिक खेती हो रही है उस खेती की विधा का यथार्थ ज्ञान दे करके हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हमारी सुनीता पांडे बहन बैठी हुई हैं, आप एग्रोनॉमी प्रोफेसर हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से, आपका भी प्रयास है। हमारे लुधियाना से पूनम बहन, आप भी साइंटिस्ट हैं और आपका भी इसमें प्रयास है। अन्य कई साइंटिस्ट और ये हमारे कृषि अधिकारी बैठे हैं। तो मेरा एक आपसे एक सूचन है, कल आपसे अगर अनुभव पूछा जाएगा आपको यहाँ कैसा लगा, तो आप क्या जवाब देंगे? मेजोरिटी का एक ही जवाब होगा, कैसा लगा? दीजिए जवाब, बहुत अच्छा लगा। हम अच्छा उसको कहते हैं जिस इच्छा से अर्थात लक्ष्य से आपको यहां बुलाया गया है उस लक्ष्य की सिद्धि हम और आप मिल करके करें, क्या ये संभव है? है? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के इन अधिकारी भाइयों ने वहां से फार्मर्स को यहां ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू किया, आज अनेक स्टेट में उसकी कलम लगी। ऐसे ही हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे साथ महाराष्ट्र की कई यूनिवर्सिटी ने एमओयू किया हुआ है, तो वो लोग भी वहां रिसर्च का काम कर रहे हैं। शायद हमारी विमला बहन को इसीलिए परमात्मा ने यहां भेजा है कि जिस राजस्थान की इस पवित्र और श्रेष्ठ भूमि पर उसका अवतरण हुआ है, तो वहां की यूनिवर्सिटी तो किसानों को जगाने के लिए निमित्त बने, हमारे साथ में एमओयू करे और हम ऐसा रिसर्च का काम करके यहाँ की सरकार को दिखाएं कि वास्तव में योगी खेती क्या है। और आपका भी ये संकल्प है, हम बात कर रहे थे तब आपने कहा कि कोई भी प्रकार की सेवा होगी एमओयू करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, और जो गांव हमने अडॉप्ट किए हैं वहां पर भी ये वैल्यूज का एजुकेशन के लिए मैं तैयार हूँ, मेरा आपको पूरा सहयोग रहेगा। इसके अतिरिक्त और भी हमारे कई भाई ऐसे हैं जिनके अंदर कई विशेषताएं हैं। अभी कोई बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये पराली का जो प्रश्न है उसको हम किस रीति से उसमें से ये फॉग निकाल करके उसको यूज करते हैं, उसका ये करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है सर्वांगीण विकास के लिए सबका सहयोग होगा, केंद्र बिंदु आध्यात्मिकता रहेगा, तब ग्राम स्वराज्य से हम पुनः स्वर्णिम भारत का निर्माण कर सकेंगे। और यही भारत देवभूमि था, स्वर्णिम था, पुनः बनेगा। बनाया किसने? स्वर्ग स्वर्णिम भूमि पर रहने वाले कौन थे? वो भी देवताएं मनुष्य थे, उनको भी दो आंख दो हाथ दो पैर थे, लेकिन उनके जीवन में दिव्यता थी। उस दिव्यता को हमें अपने व्यवहार में रहते हुए पुनः राज्यों के माध्यम से धारण करना है और यही श्रेष्ठ संस्कार स्वर्णिम संसार का निर्माण करेंगे। तो हम ऐसा कुछ आपस में बैठ करके जाने से पहले ये बनाए कि राजस्थान के जो भाई बहने आए हैं वो वहां पर किस प्रकार से सहयोगी बनेंगे, उत्तर प्रदेश के भाई बहने सभी मिल करके ऐसा कोई ठोस प्लान बना करके जाएं जिससे इस देश के किसान की जो एक इतना सब कुछ खर्च करने के बाद भी जीवन में खुशहाली खेतों में हरियाली नहीं आ रही है, बापू गांधी का जो स्वप्न था राम राज्य का, उसको हम पूर्ण कर सके, हमें आशा नहीं दृढ़ विश्वास है। क्योंकि यहाँ इस कार्य को कराने वाला जो सर्व का बापू जी है, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा है, उसने हम सबको निमित्त बनाया है। तो हम इस भारत को अपने संस्कार परिवर्तन से, अपने गांव के किसान और जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसमें उन्हों को आत्मनिर्भर बना करके स्वर्णिम भारत के निर्माण के कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। इन्हीं श्रेष्ठ शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।
किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें? ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा श्रद्धे दीदी जी के आशीर्वचन आप सबने प्राप्त किए, सूत्रधार होने के नाते अगर आप भी थैंक्स करना चाहते हैं तो एक बार स्टैंडिंग ओवेशन करके दीदी जी का धन्यवाद कीजिए। एक व्यक्ति का संकल्प क्या कर सकता है? बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सबका। और अब मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि हमारे दो मेहमान आज मंच को सुशोभित कर रहे हैं, आप आए और सरला दीदी जी के कर कमलों द्वारा आपको भेंट सौगात दी जाए। रिश्तों के धागों में आप बैठिए, सिर्फ दो मिनट है, आप कोई भी बाहर नहीं जाएगा। रिश्तों के धागों में एक सुर मेरा एक तुम्हारा, दुआओं की लोरी में एक सुर मेरा एक तुम्हारा, प्यार की सौगात है इस बंधन में कुछ बात है, रिश्तों के धागों में एक सुर मेरा एक तुम्हारा। श्रद्धे कुलपति श्री विमला बहन टंकवाल जी। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, सफर जो धूप का किया तो ये तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाव छाव चली। ब्रात जॉइंट डायरेक्टर कृषि विभाग लखनऊ के ब्राता अनिल कुमार सागर जी। सागर, जितना अनुभव आपके पास है, समय की सीमा थी, वरना आपके अनुभव से डॉक्टर विमला डंकवाल के युगल और उनके पीए भी मंच पे दो मिनट के लिए जल्दी से पीए और उनकी युगल आप दोनों भी मंच पे आएंगे। आपको भी परमात्मा के घर से छोटी सी सौगात दी जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस का समापन सत्र अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आइए और दीदी जी के हाथों से आपको भी ईश्वरीय सौगात दी जा रही है। आपका भी ये मंच सम्मान और सत्कार करता है। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं, बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं, कितने नादान होते हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। अब ना अटकना है और ना ही भटकना है, अब दिशा मिली है उसी दिशा पे चलना नहीं है, दौड़ना है। और अब अंत में एक ऐसे कर्मयोगी को आपसे मिलाना चाहूंगी सिर्फ दो मिनट के लिए। ब्राता शशिकांत भाई, आप मुख्यालय कोऑर्डिनेटर है, मैं विशेष कहना चाहूंगी, ये कभी मंच पे नहीं होते हैं, पर्दे के पीछे रह करके ये सारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है उसमें आपने बहुत दिन रात एक किया है। आप सबका आभार करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। आपका आना भार नहीं है लेकिन ये परंपरा है, उसे निभाना ये हमारा गुण है और उसे निभा रहे हैं प्राता शशिकांत भाई। एक बार इस कर्म योगी की जोरदार तालियों से उनकी सेवाओं की सराहना कीजिए प्राता शशिकांत भाई।
ओम शांति, सभी प्यार से बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, प्रातस्मरणीय हमारी प्रेरणा मूर्ति, इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय सरला दीदी जी, आज की सभा की मुख्य अतिथि हमारी बड़ी बहन विमला डंकवाल जी, आज जिनकी प्रेरणा से सारे भारत के किसानों को शाश्वत योगी करने की प्रेरणा मिली है, ऐसी हमारी आदरणीय सुनंदा दीदी जी, भ्राता अनिल कुमार सागर जी और हमारे वरिष्ठ भ्राता जिनकी प्रेरणा से बचपन से लेकर के अब तक जिन्होंने मार्गदर्शन किया आध्यात्मिक जीवन कैसा जीना है और कैसा आगे बढ़ना है, आज इनकी प्रेरणाएं हमने सुनी। ऐसे हमारे आदरणीय पूजनीय हमारी करुणा भाई जी, और इतना सुंदर मंच संचालन कर रही है, भले आज हमारे से छोटी है, लेकिन कहा जाता है मूर्ति छोटी है लेकिन कृति महान है। ऐसे हमारी किरण बहन जी, आज मेरा आज इस समापन अवसर पर आभार व्यक्त करने के लिए का जो मेरे मुझे दायित्व दिया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं सर्वप्रथम उस पिता परमात्मा प्रकृतिपति परम कृषक परम शिक्षक पिता परमात्मा का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसकी प्रेरणा से आज आप सभी यहां पहुंचे हैं। हर कार्य में हर क्षेत्र में हमें उनकी प्रेरणा से ही हम कार्य करते हैं, उनकी प्रेरणा से हम हर कार्य में सफलता भी प्राप्त करते हैं। इसकी विधि भी आपको सभी हमारे वक्ताओं ने सुनाई ही है। तो उस पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद तो क्या कहूं, लेकिन मैं नमन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूं, और बहुत उन्होंने प्रेरणा दी है। ऐसी पिता परमात्मा से हमें प्रेरणा प्राप्त हुई होती रहे, यही मैं अपेक्षा करता हूं। तो शिव बाबा का भी बहुत आभार है, उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा अपने अव्यक्त रूप में भी हमें आज वर्तमान समय भी प्रेरणा देते हैं। साथ साथ इस विंग की स्थापना के निमित्त जिनकी एक एक संकल्प शक्ति थी, और उनकी संकल्प शक्ति से आज इस विंग को इतनी चालना मिली, प्रेरणा मिले, उनके आशीर्वाद प्राप्त हुए, ऐसे हमारी प्रेरणा मूर्ति परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारी पूज्य दादी प्रकाशमणि जी, हमारी प्रथम अध्यक्षा आदरणीय मोहिनी दीदी जी, उनकी भी कितनी ना महिमा करें, तो उनका भी मैं आज उनकी सूक्ष्म शक्तियों का उनकी सूक्ष्म रीति से प्रेरणा उनका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और विशेष रूप से आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी बहन बिमला डंकवाल जी का। आप इतना व्यस्त होते हुए भी आपके कार्य में अपने हम यहां पधारे और हम इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, अपने बहुत अच्छे बात हम सभी के सामने रखी, अपने हमारे बचपन की यादें दिलाई, तो मुझे भी मेरा बचपन याद आने लगा था। मैं भी एक गांव में रहने वाला एक छोटे से गांव से निकला हुआ आत्मा हूं। बचपन में हम भी गांवों में बहुत कुछ संस्कार और संस्कृति को देखा है नजदीक से, और उस संस्कार और संस्कृति से ही आज हम यहां तक आए हैं और आप सभी के सामने खड़ा हूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बहन जी, साथ साथ हमारे आदरणीय सरला दीदी जी, जिनको मैंने 40 सालों से देखा, जिनकी प्रेरणा से और जिनके आशीर्वाद से जिनके मार्गदर्शन से इस एक छोटे से बीज को ग्राम विकास प्रभाग को यहां बोया गया, और इसी हॉल में 1995 में बोया गया, तो वो दिन भी मुझे याद है। यही मंच था और यही हॉल था, इसी हॉल से इस हमारी विंग की शुरुआत हुई है, और मेरा सौभाग्य है तब से आज तक दीदी जी की प्रेरणा से इस ग्राम विकास को आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा मिलती है, सेवा करने का चांस मिलता है। दीदी आपका वात्सल्य और अपनी दिव्य दृष्टि से कितना न वर्णन करें, आपका बहुत बहुत आभार है। दीदी जी इतना व्यस्त रहे हमारे प्रभाग की सेवाओं में, दीदी जी का इतना बड़ा जोड़ है, तो भी अपने उसमें से व्यस्त होते हुए भी समय निकाल करके दीदी हमारे बीच में आई, अपने आशीर्वचन दिए, इसलिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारी सुनंदा दीदी जी, इनके भी अंग संग रह करके हमें 40 साल हुए, और उनका भी समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। तो सुनंदा दीदी जी भी एक बड़े जोन की इंचार्ज है, साथ में हमारी विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर है, दोनों कारोबार को देखते हुए भी, संभालते हुए भी, व्यस्त होते हुए भी आपने अपना समय दिया और आप आकर के हम सभी के बीच में हमें प्रेरणाएं दी, इसलिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। साथ में हमारे आदरणीय करुणा जी, भले आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी अपना समय हमारे लिए दिया और यहां तक आए और हमने आशीर्वचन हम सभी के लिए उच्चारण किए, इसलिए मैं हमारे आदरणीय करुणा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ में मेरे भाई अरुण कुमार सागर जी, अपने भी बहुत अच्छे वक्त से हम सभी को प्रेरणाएं दी हैं और आप जो प्रेरणा लेके जा रहे हैं सचमुच एक प्रेरणादायी है, सभी को प्रेरणाएं मिलेगी। अपने मार्गदर्शक हमारे वरिष्ठ भ्राता बद्री विशाल जी आपके साथ हैं, आप घबराइए नहीं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो हमारे अरुण कुमार सागर जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और साथ में हमारी छोटी बहन जिनका इतना अच्छा वक्तव्य, जिनका अच्छा कोऑर्डिनेशन इस सभा को मिला, ऐसी मेरी छोटी बहन, लेकिन छोटी नहीं लेकिन हमारे से भी ज्ञान से बहुत बड़ी है, इसलिए मैं किरण दीदी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस सभा के बीच में अगर आप सभी नहीं आते, आप सभी की उपस्थिति नहीं होती तो सभा कैसे होती। तो पिता परमात्मा ने आप सभी को यहां बुलाया और यहां आप आए हैं। तो मैं छोटी सी एक मिनट में एक कहानी सुनाता हूं। एक पिताजी थे, एक अधिकारी थे, अपने घर में बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे, उनके सामने एक दूध का ग्लास था, उनका छोटा सा 4 साल का बच्चा खेल रहा था। वो बच्चा आकर के उस दूध के ग्लास पर के सम्पा जो चीनी थी, चीनी की कटोरी रखी थी, तो वो चीनी की कटोरी से चीनी डाल रहा था, एक चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच, तो उनका भाई साहब का ध्यान उस तरफ गया। उन्होंने कहा, अरे बेटा ये क्या कर रहा है। उस बच्चे ने जो जवाब दिया हम सभी के लिए बहुत प्रेरणा दे के जाएगा। उस बच्चे ने कहा, पापा मैंने केवल इसमें चीनी डाली है, चीनी को घोला नहीं है, जब तक चीनी नहीं घोलेगी तब तक दूध मीठा नहीं होगा। तो आप सभी यहां आए हैं, आपके पात्र में हमने ज्ञान रूपी चीनी डाली है, तो इसको घोलने का कार्य आपको करना है। तो आप इस कार्य को जितना घोलते रहेंगे इतना सारा भारत हमारा मीठा, जो हमारा स्वर्णिम भारत था, दैवी भूमि थी, उस दैव भूमि को हम पुनर्स्थापन कर सकते हैं। तो आइए फिर से हम हाथ में हाथ लेकर के भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। इसी आशा से, इस विश्वास से पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ में हमारे जो भी हमारे सहयोगी साथी है, हमारे ज्ञान सरोवर के जो भी सहयोगी हमारे भाई है, साउंड वाले है, लाइट वाले है, हमारे हारमोनी हॉल वाले हमारे भाई है, हमारे किचन वाले, डाइनिंग वाले है, इन सभी का धन्यवाद। साथ में हमारे आदरणीय, हमारी पूजनीय, हमारी दीदी, इस ज्ञान सरोवर की जो डायरेक्टर है हमारी सुदेश दीदी जी, उनका भी मैं उनके अति सहयोग से, अमूल्य सहयोग से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत भाई का। और अब एक मिनट परमात्मा का आशीर्वाद लेकर के हम यहां से बाहर जाएंगे। एक मिनट।
सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।